आयत नंबर 32 है, फमन असलम मिम्मन कज़ब अलल्लाही व कज़ब बिस्सिद्क़ इज़ जाअहू अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन। फिर इस शख्स से भड़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्ची बात इसके सामने आई तो इसे छुटला दिया। अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या ऐसे काफिरों का दोजख में ही ठिकाना नहीं। यहाँ से सबक का आगाज़ है और पारे का भी आगाज़ है और बात शुरू होती है फ़मन से, पस कौन है। बज़ाहर देखने में ऐसा लगता है सवाल किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ करवाया जा रहा है कि जो अल्लाह ताला पर झूठ घड़ता है, और इंसानों में से बदतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पर झूठ घड़े। अल्लाह ताला दो मुख्तलिफ़ किरदारों के साथ हमारा तारुफ़ करवाते हैं, एक वो है कि जो अल्लाह के दीन को और अल्लाह के नुमाइंदे को मानने वाला है, हर हुक्म की तस्दीक करने वाला है चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन इसके बरक्स एक वो शख्स है कि जो ख़ुद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है और जब उसके सामने सच्ची बात आ जाए तो उसको झुठला भी देता है। यहाँ असल में मुराद वो शख्स है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। क़यामत के दिन वो शख्स सबसे ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक होगा जिसने खुद साख्ता अकीदे घड़ लिए कि जिसमें अल्लाह ताला के इख्तियारात अपने मनपसंद बुज़ुर्गों को दिए और किसी से कुछ छुड़वाने की बात की, किसी से कुछ छुड़वाने की बात की, मनमाने तरीके से दीन की इबादत की रस्में डालीं, और जब अल्लाह का नबी या अल्लाह का कोई नुमाइंदा अल्लाह ताला की बात लेकर आया तो उसने उसको झुठला दिया, क्योंकि उसकी बात उसके मन घड़त अकीदों और उसकी मनपसंद रिवायात से टकराती थी। ऐसा शख्स हक को हक समझते हुए भी सिर्फ इसलिए झुठला देता है कि उससे उसके नाम और उसके काम पर और वो रिवायात जो कई सालों से उसने कायम की होती हैं उस पर ज़द पड़ती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को सबसे बड़ा जालिम अज़लम के लफ्ज़ से साबित कर दिया, जो सुपरलेटिव डिग्री है, अफजल व तफसील का सीगा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एक होता जालिम, एक ज़ल्लाम, और यहाँ अज़लम, अफअल, अकबर, अरशद, यानी सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला कौन है। मिम्मन कज़बा, जिसने झूठ बांधा। यहाँ मिम्मन कज़बा से मुराद होगा वो शख्स जो ये दावा करे कि अल्लाह की औलाद है या कोई उसका शरीक है कि उसकी बीवी है। अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है, और आप देख रहे हैं कि पीछे से तौहीद का बयान चल रहा था कि लोग किस तरह से कभी फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते, कभी किसी इंसान को अल्लाह का बेटा करार देते, कभी नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला का जिन्नों के साथ नसब जोड़ देते। ये तमाम बातें कहने वाले दर हकीकत इस बात की दलील देते हैं कि वो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं। और साथ ही साथ दूसरा इनका कसूर क्या था कि वह कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ी, और छुटला दिया सच को। क्या सच था? एक बात, सच से मुराद इस्लाम है। इसी तरह इसकी दूसरी तफसीर की जाती है कि सिद्क बमानी सादिक, सच्चा, और मुराद होगा फिर रसूल, कि जिन्होंने उस सच्चे दीन को जो उनके पास आया उसे झूठा बता दिया। क्योंकि आप देखिए कि सच्चा दीन क्या था, तौहीद, फिर कुछ अहकामात, फ़राइज़, फिर दोबारा जी उठने का अकीदा, कुछ चीज़ों से इज्तनाब जो कि अल्लाह ताला ने हराम करार दी, फिर इसी तरह आप देखिए कि मोमिनों के लिए खुशखबरियां और काफिरों के लिए वईदें, ये सारी चीज़ें दीन और शरीयत के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तो जिन्होंने इन चीज़ों का ना माना, गोया के कज़्ज़ब बिस्सिद्क़, इतनी बड़ी सच्चाई को ना माने जो उनके सामने खुल के आ गई। और दूसरी बात क्या है कि जिसने इस दीन को नहीं माना, गोया कि उसने उस शख्स को भी नहीं माना जिसका तज़किरा अगली आयत में आ रहा है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब सच उनके पास आ गया, जब हकीकत वाला दीन उनके पास आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला दीन उनके पास आ गया, तो क्या फिर उसके बाद इन्होंने इसके बावजूद भी इसको मानने से इनकार कर दिया? कितनी ज़रूरत है इनकी कि अल्लाह ताला के इख्तियारात अपने प्यारों को सौंपते हैं? क्या इनका ख्याल है कि इनके पास भी वही सारे इख्तियार हैं जो अल्लाह के पास हैं? जब इनको बात बताई जाए तो उस बात को बताने वाले की मुखालफत पे उतर आते हैं, और बाज़ दफ़ा वो बातें जो बिल्कुल मनघड़त होती हैं उनको लोगों के सामने एक खूबसूरत दीन के नाम पे पेश करते हैं, अलैस फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या नहीं है जहन्नम ठिकाना काफिरों का। यहाँ अलैसा इस्तफहाम है, लेकिन इससे मुराद इस्तकरार है, यानी साबित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। हाँ वाकई है, कोई अल्लाह तआला से पूछ नहीं रहे, हमें बता रहे हैं कि देखो क्या इन काफिरों का दोजख में ठिकाना नहीं है। मुराद क्या है कि और दोजख के अलावा ये फिर कहाँ जाएंगे। वल्लज़ी जा बिस्सिदक़ी, दोबारा कहा, क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना दोजख नहीं। कौन? वल्लज़ी जा बिस्सिदक़ी वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तकीन, इसके अपोजिट। ये तो एक किरदार था, लेकिन दूसरी बात वो शख्स जो सच्ची बात लाया, ये कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सच्चा दीन लेकर आए। और इससे मुराद हर दौर का वो शख्स है जो तौहीद की दावत देता है और अल्लाह ताला की शरीयत की तरफ बुलाता है। और तीसरा शख्स कौन है? वह सद्दक बिही, वो जिसने इसकी तस्दीक की। मुफसरीन का इत्तेफाक है इस बात पे कि इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने की, औरतों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल किया। तो लिहाजा सद्दक बिही से मुराद आम राय यही है कि अबू बकर सिद्दीक हैं, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और ख़ास तौर पे उन्होंने अल्लाह के नबी के वाक़े मेराज की तस्दीक की थी कि जब लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया कि कोई शख्स रात को जाके सुबह से पहले कैसे वापस आ सकता है, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक के सामने ये बात रखी गई तो कहा अगर वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो ये हो सकता है। और यही वो मौका था कि जब इनको सिद्दीक का लकब मिला। इसी तरह फिर ये भी कहा जाता है कि हर दौर का वो शख्स जो रसूल की रिसालत पर ईमान ले आए वो भी सद्दक बिही में आता है। उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही हैं तकवा वाले। अगर आप देखें ना, मैं थोड़ा सा दोनों आयतों के ज़मायर आपको फिर लिखाऊं ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। पहला शख्स है फमन, ठीक है, ये कौन है? मिम्मन कज़ब अलल्लाह, जो अल्लाह पर झूठ बांधे। इसके नीचे लिखिए आप झूठी नबूवत का दावा भी करने वाला हो सकता है, और मुशरिक जिसने अल्लाह को ना माना। फिर दूसरी बात कज़ब बिस्सिदकी, ये दूसरा फेल है। गोया कि ये जुल्म की मुख्तलिफ़ किस्में बयान की जा रही हैं। सच आ गया इसके पास, इसने उसको झुटला दिया। इस जाहू, ये सच दीन की सूरत में भी हो सकता है और बमानी सादिक यानी सच्चे दीन की सूरत में भी हो सकता है। और ये जो इस का लफ्ज़ है ना, इस जाहू, ये इस जहाँ हीन के मानों में है, और ये इसम ज़र्फ जमान है, ज़माने की कैमियत है। इस मैंने वैन इंग्लिश में इसको आप कहेंगे वैन इट केम टू हिम, जब उसके पास आया। अलई सफ़ी जहन्नम मस्वलिल काफिरीन, क्या जहन्नम फिर ठिकाना नहीं है काफिरों का। मसवा सा वाओ या से सावी सावा ठिकाने के मानों में आता है। मुराद ये है कि यकीनन जहन्नम ही इनके लिए ठिकाना है और इससे भड़के और कोई चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ तक तो हो गया मुशरिक और नबी को ना मानने वाला और नबी की लाई हुई शरीयत को ना मानने वाला। इसके बाद आयत 33 में देखिए वल्लसी जा अबिसित, इसके नीचे हाईलाइट कीजिए और लिखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। इसकी करीब की तफसीर यही होगी, लेकिन आज के दौर में और क़्यामत तक के लिए कौन है? जो सच्चा दीन लेकर आए, वो दीन की नुमाइंदगी करे, वो उन लोगों को सच्चा दीन सिखाए, कोई भी। और तीसरी जो जिन्स इधर है वह सद्दक बिही, ये तीसरी शख्सियत है हमारे सामने जो सच्चे दीन को कबूल करे। ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो, और उसके बाद हर एक वो जो अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान रखे। जितनी तस्दीक होगी उतना ही मुकाम होगा। हर दौर का अबू बकर मुख्तलिफ होगा, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मुख्तलिफ मुकामात रखे हैं। तो गोया कि ये वो लोग हैं कि जो सच को नहीं मानते वो जहन्नम में जाएंगे। इसके बरक्स वो लोग जो शिर्क करते हैं, जो गलत अकीदे घड़ते हैं, तो क़्यामत के दिन सबसे ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक वही होंगे। ऐसे लोगों को उस जहन्नम से डरना चाहिए जिसका शिकार काफिर लोग होंगे, जिनके ज़रिए उसको दहकाया जाएगा। और चले खुद समझ नहीं आई, इस जाहू किसी ने बयान कर दिया, बात समझ गए लेकिन मुखालफत पे उतर है। सोचिए ज़रा ज़िंदगी में क्या ऐसे लोग होते हैं, क्या कितने ही लोग ऐसे नहीं हैं कि जो दुनिया में इस किस्म की बातें करते हैं और अल्लाह के नबियों को नहीं मानते। और नतीजा क्या होता है کہ جہنم کا ایندھن بننے لگیں گے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو مانیں گے، جو اللہ کے نبی کے کلام کو اور اللہ کی بات کو مانیں گے، ایسے لوگ یہ کون ہیں؟ اولائک ہم المتقون، یہ تقویٰ والے لوگ ہیں، یہ پرہیزگار ہیں. بالکل پچھلی آیت کا عکس ہے، یہ آیت سچ بولتا بھی ہے اور سچ بولنے کی تصدیق بھی کرتا ہے. یہ دونوں شخصیت ایک بھی ہو سکتی ہیں، جا اب صد و صد کبھی ہی، یہ دونوں کو جمع کر لیں تو بھی ایک ہے، کہ بولتا بھی سچ ہے، کہتا بھی سچ ہے، اور جب سچ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ سچ کو مانتا بھی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے. ایک یہ چیز تھی کہ جو رب چاہے وہ ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملے گا جو یہ چاہیں گے. سبحان اللہ. ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین کی جزا ہے، یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے. یہاں دیکھیے کہ وہ کیا چاہیں گے. آخر ہر ایک انسان اپنے اوپر لے کے تو سوچے کہ اس کا رب اس کو کیا دے. سب سے پہلی بات مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرما دیں گے، کیونکہ ہر انسان کی یہی تو خواہش ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کی خواہش کیا ہوگی؟ کہ جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز اس کو مل جائے، ہر چیز اس کو چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں دور نہیں ہیں. ایک ایمان والا جب موت کے دروازے پہ پہنچتا ہے نا، تو اس کو اپنے رب سے انعامات ملنے شروع ہو جاتے ہیں. انعامات کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. جنت تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں. ایسے متقین پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری فرمائے گا. ایسے لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا، روزے قیامت کی ہولناکیوں اور حساب کتاب کی سختی سے بھی ان کو محفوظ رکھا جائے گا. کتنی آسان بات ہے، آج اس دنیا میں اللہ کی مرضی پوچھ کے جیو، کل وہ تمہیں وہاں تمہاری مرضی کی چیز دے گا. لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے، اور وہ کیا؟ جزاء المحسنین، محسنوں کی یہ جزا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے ایک لفظ محسن اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایک لفظ میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے سارے معنی مختلف رکھے نا تو تقریباً 4 سے 5 عمل کرنے والا محسن بنتا ہے. سب سے پہلی بات، محسنین ایک تو وہ ہے جو حسنات لے کر آئے، یعنی گڈ ڈیڈس لے کر آئے. محسن حسنات سے لفظ ہے، بہت ساری نیکیاں لے کے آئے. دوسری بات، محسن وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث جبریل میں بھی آتا ہے کہ احسان کیا ہے، انتا بد اللہ کا انک تراہو فعلم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا محسن کون ہے؟ اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا. اسی طرح تیسرا لفظ جو محسن کے لیے آتا ہے وہ کیا؟ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اچھا برتاؤ کرے. لوگوں کے ساتھ بھی اچھا عمل دو طرح سے ہوتا ہے. اس قسم کو آپ نیچے 2 میں ڈیوائڈ کر لیجئے، ڈاؤن ایروز ڈالیے. نمبر 1، کال کے ساتھ محسن، لوگوں کے ساتھ، اور دوسرا فعل کے ساتھ محسن. کال کے ساتھ محسن انسان کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں پہ درگزر کر دے، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرے. خول الناس حسنا والی کیفیت جو سورہ بقرہ میں گزر گئی. اور عمل میں محسن کیسے ہوتا ہے؟ ان کے حق سے زیادہ دے، جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دے. کسی کو کہا $10 دوں گی پے، تو بعد میں 12 دے دے، کچھ اور طرح کی گنجائش دے دے. حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو اس طرح محسن لوگوں کے ساتھ ہر رنگ میں محسن ہوتا ہے. لوگ اس کو ستائیں وہ معاف کر دے، لوگ گالیاں دے وہ دعائیں دے، لوگ اس کو برا کہیں یہ ان کو اچھا کہے. اس طرح وہ شخص محسن بنتا جائے. چوتھا معنی بھی ہے ایک محسن کا، اور وہ کیا؟ کہ ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ کرے اور سنت نبوی کے مطابق کرے. تو گویا کہ محسن کیا ہوا؟ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کرنے والا یہ محسن ہے، گویا کہ کثرت کی بجائے حسن کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، پیچھے والی آیت کو ساتھ ملایا، اب آگے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہیں اجر عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دیں کہ ایسے متقین اگر جاہلیت کے دور میں کچھ برے کام بھی کر چکے، کچھ گناہ بھی کر چکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا۔ پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو اچھے کام کیے، ان میں سے بھی جو کام سب سے بہتر ہوگا، اس کی جزا کے مطابق دوسرے عملوں کی جزا دی جائے گی، خواہ وہ اس پائے کے نہ ہوں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گی، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق دے۔ ایک بندہ ہمیشہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں، اللہ مجھے بھی کر دے۔ اب وہ بندہ جو اچھی نماز پڑھتا ہے ہمیشہ، اس کے کھاتے میں ہمیشہ اچھے طریقے کی نماز جاتی ہے، لیکن کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، کسی وقت وہ نماز بس واجبی سی پڑھتا ہے، تو اس آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کم درجے کی نماز کو بھی زیادہ درجے کی نماز میں بدل دے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کیونکہ یہاں بات ہے نا، بی احسن الذی کانوا یعملون، کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا۔ ایک اور جگہ تھے، اولئک الذین تقبلوا عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں اور برائیوں سے درگزر کر لیتے ہیں۔ کتنی سچی بات ہے، وہ رب کتنا پیار کرنے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 161 میں آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ یعنی جو کوئی نیکی کے ساتھ آیا تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی کے ساتھ آیا تو بس اسی کے برابر بدلہ پائے گا، اور وہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ کتنا پیارا ہے نا رب، برائی صرف اتنی، اور جزا اجرہم بیحسن اللذی کانوا یعملون۔ پھر اسی طرح عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے، سارا دن اچھے کام کرتے رہیں، روز اچھے کام کریں، کسی نے غلطی کر دی کسی ورکر نے تو اس کی پے میں سے کٹ گیا، اس کا نقصان تھا، اس کی غلطی تھی، یہ بھگتے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندے روز اچھا کریں، کبھی کبھی برا بھی کر دیں، تو میں اس کو بھی اچھا بدلہ دیتا ہوں۔ بتائیے، جس کا اتنے پیارے رب کے ساتھ معاملہ ہو، کیا ایسا بندہ کیا کبھی محروم رہے گا؟ کیا اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، نیکیوں میں حسن نہیں آئے گا؟ ہم اپنے انسانوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ احسن کے لفظ میں چھپا ہوا ہے، الف نکال دیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ حسن، خوبصورتی، ہر ایک اس کا دیوانہ ہے۔ کپڑے خریدیں تو حسین، خود شکل و صورت لگ بنے تو حسین، جوتا بھی لیتے ہیں جو پاؤں میں بیچارہ گرتا ہے اور مٹی میں رلتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں خوبصورت جوتا چاہیے۔ تو ایک انسان پھر آخرت کے اعمال کے لیے خوبصورت عمل کیوں نہ کرے؟ کیا مشکل ہے ایسا بندہ جو اللہ کے لیے نیکیوں کو سجا سجا کے رکھتا ہے، پیار سے رکھتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح، کہ جب درہم دیتی اللہ کے راستے میں تو اس کو خوشبو لگا دیتی، کہ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ وہ درہم اس غریب کے ہاتھ میں پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ جب میرا درہم اللہ کے ہاتھ میں جائے تو اس کو خوشبو لگی ہو۔ ہم ذرا اپنے عملوں کو دیکھیں، ماری باندھی ہماری نمازیں، مارے باندھے ہمارے کام، جہاں کچھ نہیں کر پاتے، سارے اسباب بند ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم صبر کرتے ہیں، بدلہ لینے کی ہر کوشش میں ناکام ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا میرا بدلہ اللہ لے گا۔ اپنی زندگی میں حسن پیدا کیجئے، یہ دنیا اس آخرت کا ایک پرتاؤ ہے، جو آج کریں گے کل وہی ملے گا۔ آج اللہ کے راستے میں جو ہمارے معیارات ہیں، کل وہی معیار ہمارے ہوں گے پانے کے۔ آج دینے کے دن ہے، کل لینے کے دن ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن عموماً خوبصورت عمل انسان کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اس کو دوسروں کی امید ہوتی ہے۔ वो अपनी सारी खूबसूरत चीज़ें दुनिया वालों के लिए रख लेता है, सजा सजा के, संवार संवार के रखता है, इसलिए कि हाय लोग नाराज़ ना हो जाएं। हाय लोगों को नाराज़ नहीं करना, तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम लोगों पे डिपेंड करते हो, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे को काफ़ी नहीं है। तो यही बात सूरत बकरा आयत 137 में आती है, फ़ैन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। बस अगर वो ईमान लाए उसी जैसा जो तुम ईमान लाए तो बेशक वो हिदायत पा गए, और अगर तुम मुंह फेर लो तो सिवाय इसके नहीं कि वो शिकाक में हैं। पसंद करीब आप कौन से अल्लाह किफायत करेगा, और वो सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह। व युखव्विफूनक बिल्लज़ीन मिन दूनिही, और ये लोग आपको इनसे डराते हैं जो इसके सिवा हैं। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और इसके बरक्स वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे इसे गुमराह करने वाला कोई नहीं। अलैहिस्सल्लाहु बिअज़ीज़िन ज़िन्तिकाम, क्या अल्लाह ताला खूब इंतकाम लेने वाला नहीं है। इस आयत को भी समझने की ज़रूरत है। अलैहिस्सा सवाल से बात शुरू होती है, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है। यहाँ जो लफ्ज़ है ना अब्दहू, इस अब्द की तफसीर दो तरह से की गई। एक तो इससे मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मुशरिकीन अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ थे, धमकियाँ देते थे कि देखो तुम हमें छोड़ दोगे तो क्या होगा, और तुम छोड़ दोगे तो ये होगा और वो होगा, इस तरह की बातें। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर वो इंसान जो इस रास्ते में आ जाता है, तमाम अंबिया कराम पहले के दौर में से और आज के दौर में मोमिनीन, हर वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है अल्लाह उसको काफ़ी होता है। और वह युखव्विफू नका, और आपको डराते हैं, मुराद इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि आपको किन से डराते हैं। बिल्लज़ीन मिन दूनिही, ये दूनी ही की ज़मीर को पहले लिखें फिर बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ही से मुराद अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ है बात, यानी उस अल्लाह के सिवा आपको दूसरों से डराते हैं, मतलब के गैर अल्लाह से डराते हैं। इनका ख्याल है हमारी देवियों को अगर आपने नाराज़ किया तो आपकी नाउज़ु बिल्लाह हालत ख़राब हो जाएगी, और इनको नाराज़ नहीं करना, और इनके साथ अच्छा रखिए, और ये ऐसे हैं और वो वैसे हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं लोग, जिसका तذکرہ आगे भी आ रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं ये आपको गैर अल्लाह से, गैर खुदाओं से डराते हैं। इनका ख्याल है कि आप उनको नाराज़ करेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो के आपको नुकसान देंगे। नहीं, याद रखो कि जब अल्लाह आपका हामी और नासिर है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो इन सब को पूछ लेगा, वो इन सब से निबट जाएगा। वो कहते हैं ना एक शेर भी है कि सारी खुदाई मुकाबले पे आ जाए तो जब एक अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी और का क्या डर है। और देखा जाए तो ये आयत हर एक के लिए तस्कीन का ज़रिया है। हर एक बंदा जो दुखों में है, बीमारियों में है, जो सताया गया, जो परेशान किया गया, जिसके साथ लोग ज्याती करते हैं, ऐसा बंदा जब किसी भी जगह पहुंच जाए तो फौरन इस आयत को याद कर ले। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे मुकाम आते होंगे। यहाँ चूँकि टेक्स्ट में ख़ास तौर पर तौहीद की बात है ना, तो इस बात को ज़्यादा अच्छा इस नज़र में समझिए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। अमूमन यहाँ जो बात है ना कि वो आपको डराते हैं, कौन? मक्का वाले। क्या कहा करते थे, कैसे डराते थे? अमूमन उनका जुमला क्या होता था कि आप हमारे माबूदों की तौहीन करना छोड़ दें, इसकी इनकी शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, और देखें अगर आप इनकी बातों से बाज ना आए ना तो आपका यही हाल होगा। इस तरह के जुमले इनको भी बोलते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी बोलते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की बात बहुत ही प्यारी याद आई कि जब मक्का फ़तह हुआ और अल्लाह के नबी सल्लम ने मुख्तलिफ़ सहाबा कराम को मुख्तलिफ़ तरफ भेजा कि जाके कब्रों को ख़त्म किया जाए, कहीं कोई अगर ऐसी इनकी बुतों की परस्तिश की जगह उन सबको ख़त्म किया जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने इनको जिस इलाके में भेजा वहाँ एक मंदिर था, वहाँ एक देवी थी उसकी पूजा की जाती थी। तो जब ये वहाँ गए और लोगों ने बस्ती वालों ने डरा दिया कि देखो आप इनकी तरफ नहीं जाना, आप अगर इस मज़ार को ख़त्म करेंगे तो आप पे वबा टूटेगी, लाइक दिस जो लोगों की अकीदतें होती हैं, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद जब इन्होंने खुदा लेके उस मूर्ति को ख़त्म किया तो वहाँ से उठ ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज़ उठ के ऊपर गई है, जैसे कोई बला थी उसके अंदर। जो ही ये हुआ तो इन्होंने चीख मारी और गिर गए जैसे बेहोश होते हैं। सब लोग इनके पास जमा हो गए और कहेंगे देखा हमने पहले ही कहा था, काली माई या पता नहीं उसका कुछ नाम था, रहीको मखतूम में आप ख़ुद भी ये किस्सा पढ़ सकते हैं, उसमें बड़ी तफसील से है। तो लोग भांत भांत की बातें बोलने लगे कि देखा देवी ने इसको मार दिया या इसको उसकी मार पड़ गई। जब लोग ये बातें कर रहे थे तो ये थोड़ी देर में उठ के खड़े हो गए और हंसने लगे कि मैं तो तुम्हें देख रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बात यह है कि अलैहिस्सलाह बिकाफ़ नब्दो, अब ये तो उस दौर की बातें थी, आज के दौर में भी देखिए आप ज़रा जाके पढ़ के तो देखिए लोगों ने क्या क्या कहानियाँ रखी हुई हैं, कब्रों के नाम पे, दरगाहों के नाम पे, बुज़ुर्गों के नाम पे। आप जाके किताबों को पढ़ के देखिए, तज़किराते औलिया कराम ऐसी ऐसी किताबें, उसके अंदर क्या क्या मनगढ़ंत बातें नहीं है। आज के दौर में वो बातें नहीं दिखती जिसको माजी के बुज़ुर्गों के साथ जोड़ के पूरी कहानियां बनाई हुई हैं, और अगर आप उसके बारे में कोई बात करें तो लोग कहते हैं आप बुज़ुर्गों की तौहीन करते हैं। कभी भी याद रखिए कि ऐसी चीज़ों से आप ना डरें। ठीक है हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, कोई नहीं तो ना सही, हमारा रास्ता तो इल्म का रास्ता है, हम तो जहनों के रास्ते शिर्क को ख़त्म करते हैं। किसी को इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि खुदा लेके जाए और जाके दरगाहों को तोड़ दे, ये मुस्लिम हुक्मरानों का काम है, वो जाने और उनका काम। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें इन जिम्मेदारियों से बचाया हुआ है, हम छोटे ही अच्छे। लेकिन हमारा काम क्या है कि लोगों के जहनों को खोला जाए, जो ऐसी ऐसी किताबें और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना के लोगों के जहन मुतासिर किए ना, उसको दूर करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा लोगों ने इतनी बातें लिखी होती हैं फ़लाँ आस्ताने की तौहीन की, फिर उसका चंद दिनों में कारोबार तबाह हो गया, फ़लाँ बुज़ुर्ग के हक़ में किसी ने लफ्ज़ बोले तो फिर वो वैसा बीमार हुआ कि उठ ही ना सका, और इस तरह की बहुत सारी बातें। आप देखिए जिन्होंने अम्बिया कराम की तौहीन की उनको तो कुछ ना हुआ, हालांकि वो अल्लाह की तरफ थे, उनको तो अल्लाह ने ढील दी हुई थी। तो क्या नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह से भड़के ये बुज़ुर्ग हो गए कि इनको कुछ कहने से ये नाराज़ हो गए? फिर इससे तो ये पता चल गया ना कि अल्लाह की ज़ात ज़्यादा रहम करती है, उसके भेजे वो को कोई सताए तो भी बच जाए, और जब इंसानों की तरफ कोई आए तो फिर वो पकड़े। ये चीज़ जो है इंसान के लिए सोचने की बात है। सूरत आले इमरान आयत 175 में आता है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफु औलियाअहू फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक ये तो शैतान है जो तुमको अपने दोस्तों से डराता है, बस उनसे ना डरो और मुझसे डरो अगर तुम ईमान लाते हो। क्योंकि शैतान खौफ दिलाता है ना कि बहुत लोग आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे, कोई बात नहीं उनसे मत डरो मुझसे डरो। और जो बंदा अल्लाह से डरता है फिर अल्लाह दूसरों से उसको निडर भी कर देता है। इसी तरह सूरत अल-अनाम की आयत 81 में आता है, वकैफ़ अखाफ़ु मा अशरकतुम वला तखाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाही मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्कु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून। इसमें भी देखिए कि अल्लाह के खौफ की बात हुई, तो हकीकत है कि अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो दूसरों से डरते रहते हैं फिर अल्लाह उनको काफ़ी नहीं होता। सूरत हूद की आयत 54 से 56 में भी यही बात आती है कि जब लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात से डराया कि आप हमारे माबूदों को बुराई से हाथ लगाओगे तो वो तुम पे मार डालेंगे, तो इन्होंने क्या कहा, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाबतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। मैं अपने रब पर तवक्कुल करता हूँ जो मेरा और तुम्हारा रब है, जिसने हर एक की पेशानी को थामा हुआ है, यानी उनकी किस्मत उनके हाथ में, मेरा रब सीधे रास्ते पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने निजात पाई जो इस्लाम की हिदायत दिया गया और बकदरे ज़रूरत रोज़ी दिया गया और कनात भी नसीब हुई। ये भी अलैहिस्सलाह बिकाफ़ नब्दहू की बात है, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, यानी किफ़ायत हो गई, जिसको रोज़ी मिल गई, अच्छा वक्त गुजर गया, इज्जत मिल गई, हिदायत मिल गई, बस ठीक है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें सब कुछ दे दिया, अब हमें किसी और के पास क्या जाने की जरूरत है, हम किसी और से क्यों मांगे, हमारा रब हमें काफ़ी है। जितना इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करता है, अल्लाह ताला को खालिक और मालिक माने, नफ़े और नुकसान का मालिक माने, इतना ही अल्लाह ताला उसको ज़्यादा देता है। एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह को याद रख, वो तेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह को याद रख तो उसे हर वक्त अपने पास पाएगा। आसानी के वक्त रब की नेमतों का शुक्र गुजार रहे, सख्ती के वक्त वो तेरे काम आएगा। जब कुछ मांग तो अल्लाह ही से मांग, और जब मदद तलब कर तो इसी से मदद तलब कर। यकीन रख के अगर तमाम दुनिया मिलकर तुझे कोई नुकसान देना चाहे और अल्लाह ने मुकद्दर में ना लिखा हो तो वो हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते। सहीफे खुश्क हो चुके, कलमें उठा ली गईं, यकीन और शुक्र के साथ नेकियों में मशगूल रहकर तकलीफ़ों में सब्र करने पर बड़ी नेकियां मिलती हैं। मदद सब्र के साथ है, गम और रंज के साथ ही खुशी और फराही है, हर सख्ती अपने अंदर आसानी लिए हुए है। ये इब्ने अबी हातिम की रिवायत है। तो एक इंसान अपने आप को जब अल्लाह के हवाले कर देता है, फिर उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। पिछले अंबिया कराम ने भी यही किया था, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी तो अपनी कौम को यही कहा था ना, जब उन्होंने कहा कि हूद तुझे तो हमारे माबूदों की मार पड़ गई है, नऊज़ु बिल्लाह, तो उन्होंने उस पर क्या कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तुमसे और तुम्हारे माबूदों से बेजार हूँ, तुम मेरे बारे में जो करना चाहो कर लो, मेरा रब मेरे साथ है, वो सीधे रास्ते पे है। इसी तरह अल्लाह ताला को काफ़ी समझने के बारे में एक और बड़ी प्यारी रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सबसे ज़्यादा कवि होना चाहे, आप होना चाहती हैं, सोचिए जो भी होना चाहता है उसके लिए फिर इसमें बात है आगे, सबसे ज़्यादा मजबूत तो क्या करे, चाहे कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे, और जो सबसे ज़्यादा गनी बनना चाहे वो इस चीज़ पर जो अल्लाह के हाथ में है ज़्यादा एतमाद रखे, बनिस्बत उस चीज़ के जो खुद इसके हाथ में है। और जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होना चाहिए वो अल्लाह अज़्ज़वजल से डरता रहे। इब्ने अबी हातिम की रिवायत है। और अल्लाह ने डरा दिया अलैहिस्सलाह बी अज़ीज़िन ज़ इंतकाम, कि अल्लाह ताला फिर इंतकाम लेने वाला नहीं है। क्या समझते हो तुम, जब तुम अल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर दोगे तो क्या फिर अल्लाह ताला तुमसे इंतकाम नहीं लेगा? तुम अपने काम करो, करते रहो, फिर अल्लाह पूछेगा तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने किस चीज़ को अपने लिए बड़ा समझा हुआ था, कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए कोई बहुत अहम थी। आप देखिए कि यहाँ जो ये बात है ना कि क्या अल्लाह ताला गालिब और इंतकाम लेने वाला नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि जब लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को गालिब समझते हैं तो वो अल्लाह की तौहीन कैसे करते हैं। मसला आप देखिए कि जो मुशरिक है ना, वो अपने माबूदों और बुज़ुर्गों की इज्जत का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, किस्से कहानियाँ अफसाने घड़ घड़ के लोगों में मशहूर करते हैं, लेकिन क्या उनको ये समझ नहीं आता, इतनी ज़बरदस्त हस्ती, इतनी बड़ी ज़ात जो लोगों को इज्जत दे, जो लोगों को जलील करे, जिल्लत से बचाए, क्या उसकी शान में ये गुस्ताही नहीं कर रहे? ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि अलैहिस्सलाहु बी अज़ीज़िन ज़ इंतकाम, क्या अल्लाह ताला इंतकाम लेने में सख्त नहीं है? हिदायत से निकाल सकता है, गुमराही से निकाल सकता है, हर चीज़ उसके हाथ में है, तो क्यों फिर इनको अल्लाह से खौफ नहीं आता, उसके इंतकाम लेने से ये डरते नहीं हैं? अगर ये अपने इनाद से बाज ना आए, अगर इन्होंने अल्लाह के दोस्तों को सताना ना छोड़ा, तो अल्लाह ताला इनको ऐसा पकड़ेगा कि ये अपनी जगह से उठ भी ना सकेंगे।